ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिंतयन्तो मां, जो अनन्य भाव से, और किसी अनन्य मतलब मैं और भगवान के बीच में कोई भी नहीं, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसको मैं वो देता हूं जो उसके पास नहीं है, यानी कि आनंद, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं। जो भक्ति रहती है उसकी रक्षा करते हैं भगवान, परंतु सही रूप से सिद्धि प्राप्त नहीं है, आनंद नहीं प्राप्त है, तो आनंद देते हैं। किसको देते हैं? अनन्य भक्तों को, सबको नहीं, सब झोली फेरने वालों को नहीं देते। बोलो झोली डाल के हरे कृष्णा कर रहे हैं तो आनंद मिलेगा? नहीं, वो नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? अनन्य चिंतन। तो जो आज का दिन है, जो आज का दिन है वो अनन्यता की ओर अग्रसर होने का दिन है। हमने दीक्षा प्राप्ति किसने की है? अनन्यता के लिए। दीक्षा किसने प्राप्त की है? और बारीकी से अनन्यता की ओर हम बढ़े, बिल्कुल बारीकी से, एकदम सीधे, एकदम नाक की सीधी, जरा सब इधर उधर। जो मंत्र हमारे प्राप्त हुए हैं उससे हमारा ईष्ट से संबंध स्थापित होता है, ईष्ट राधा से, कृष्ण से। हमने मंजरी बनना है तो हमारे को मंत्र प्राप्त हुए हैं, गुरु मंजरी का मंत्र, रूप मंजरी का मंत्र, अनंग मंजरी का मंत्र। तो इनसे जब हमारा, जब हम सही रूप से मंत्र करेंगे तो हमारा इनसे रिश्ता स्थापित होगा, मतलब अनन्यता। इनसे रिश्ता कब स्थापित होगा? जब हम यहां से सारे रिश्ते अपना अपने हाथ से कनेक्शन बंद करेंगे, तब ये मंत्र लाते हैं। वो बोलेंगे भाई, नहीं तो ईश देवता, वो तो नाम तो मेरा जप रहा, रिश्ता स्थापित करो, तो यहां पे लगा हुआ है, चाहता क्या तुम? व्हाट डू यू रियली वांट? हिपोक्रेट, बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है? ये जो मंत्र है गायत्री का, योना प्रचोदयात, पढ़े ना गायत्री, तो प्रचोदयात मतलब ये है कि आप मुझे बुद्धि दो ताकि मैं आपकी प्रेम पूर्वक सेवा कर सकूं। बुद्धि दो, हम बोल रहे हैं इष्ट देवता को, रूप मंजरी को, राधा कृष्णा को, तो भगवान जब कहेंगे तो बुद्धि तो अपनी खुद ही लगा रहा है, तो मैं तेरे को क्या दूं? बुद्धि तेरे को दूं तो मैं, जो तू अपनी ना लगाए, तू तो अपनी बुद्धि लगाए जा रहा है, तो मैं तेरे को क्या दूंगा? जब अनन्यता होती है तो भगवान बुद्धि देते हैं, नहीं तो बुद्धि नहीं देते। अनन्यता तेषाम सतत युक्ता नाम, मतलब अनन्यता, सतत हमेशा जुड़े रहता है। जो ये नहीं कि थोड़ी देर रूप मंजरी से, थोड़ी अपने रानी से, थोड़े अपने लव कुश से, और थोड़ा कभी इससे और कभी किस से, वो नहीं, जो मेरे से जुड़ा रहता है हमेशा। सतत का मतलब सतत होता है सारे जीवों के लिए, सतत मतलब 24 आवर्स। तेषाम सुलभ पार्थ अनन्य चेता सततम यो मम स्मरति नित्यशः। अनन्य चेता अनन्य सततम, फिर वही बात, यो मम स्मरति नित्यशः। एक श्लोक की, गीता के एक श्लोक की एक लाइन में तीन बार अनन्यता की बात की जा रही है, एक श्लोक की एक लाइन में तीन बार अनन्यता की बात की जा रही है। तो सोचिए अनन्यता कितनी महत्वपूर्ण है। अनन्यता मतलब मैं और भगवान के बीच में कोई भी नहीं आए, उसे अनन्यता कहते हैं। कौन कौन आ सकता है मेरे और भगवान के बीच में? कौन कौन आता है हमारे यहाँ? मम्मी, पापा,
वाइफ,
डिटेल बताइए, पर पढ़ देखे, हस्बैंड,
मैं,
मेरे विचार बीच में आते हैं। अनन्यता में तो बाधा के मेरे विचार, मैं और भगवान में मेरे विचार नहीं आने चाहिए बीच में, भौतिक चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। जो मेरे विचार है वो पूर्ण रूप से क्या है? भौतिक। तो अनन्यता में मेरे विचार नहीं आने चाहिए, कोई परिस्थिति बीच में नहीं आनी चाहिए, गुरु और गौरांग के प्रेम अगर हमारा अनन्यता है तो कोई चीज बीच में नहीं आनी चाहिए, कोई परिस्थिति, नो सर्कमस्टांस, नो सिचुएशन, नो अटैचमेंट, नथिंग शुड स्टॉप माई फ्लो ऑफ अफेक्शन टुवर्ड्स गुरु एंड गौरांगा. तो इसे अनन्यता कहते हैं, अनन्यता. तो ये हमारे को डेलिबरेटली, क्योंकि हम मंत्र प्राप्त कर रहे हैं तो ये अनन्यता की वजह के लिए प्राप्त कर रहे हैं मंत्र. क्यों? ताकि मैं उनसे अच्छी तरह जुड़ पाऊं अनन्य भाव से. तो जो गुरु, गुरु दो प्रकार के हैं, एक है मंत्र उपदेष्टा गुरु और एक है शास्त्र उपदेष्टा गुरु. जो मंत्र उपदेष्टा गुरु हैं उन्हें दीक्षा गुरु कहा जाता है, जो मंत्र देते हैं, जो शास्त्र के द्वारा हमें जानकारी देते हैं, हमारे संशय को हटाते हैं, उन्हें शिक्षा गुरु कहा जाता है. तो दोनों ही जो है बहुत जरूरी है बद्ध जीव के लिए. बिना मंत्र के ईश से रिश्ता स्थापित होगा नहीं, और मंत्र मिल भी गए तो ईश तक पहुंचना का रास्ता जो है वो लाइटों से नहीं जगा हुआ. वो क्या है रास्ता, क्या है हमारे यहां से लेकर भगवान तक का? ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य. पद पद पे क्या है? नाइट है, अंधकार है. जैसे मान लो अभी तुम्हारे को दिख रहा है तो हम यहां पहुंच सकते हैं गेट पे, मान लो लाइट ना हो तो हम सीधा जाएंगे और जाले में जोर की लगेगा. हर पद में जब अंधकार हो तो कैसे निवारण है उसका? हर पद पे कोई व्यक्ति हो जो हमारे अंधकार से हटाना जानता. इस वजह से शिक्षा गुरु की महत्व है. परंतु शिक्षा गुरु हो परंतु अगर मंत्र ना हो तो भी कार्य नहीं होगा, ईश देश रिश्ता स्थापित नहीं होगा. तो दोनों बहुत जरूरी है, झगड़ा नहीं है. कोई बोलता शिक्षा गुरु महत्व, कोई बोलता दीक्षा गुरु महत्व. नहीं नहीं, दोनों महत्व. कोई बोला कि हाथ महत्वपूर्ण है, कोई बोले टांग है, तो क्या बोलोगे? अरे भाई दोनों में झगड़ा किस बात का है? दोनों है, हाथ भी चाहिए टांग भी चाहिए, अगर सही तरह हेल्दी रहना है, अच्छी तरह से कार्य करना है. पूर्व काल में पहले जो दीक्षा गुरु होते थे वही शास्त्र संबंधित जानकारी भी देते थे. समय होता था तो गुरु के पास है कि शिष्य सीखते थे, गृहस्थ भी सीखते थे और ब्रह्मचारी सन्यासी सब सीखते थे. तो यदि कोई तत्ववेता गुरु और यदि वो दीक्षा दे रहा हो, साथ में शिक्षा दे रहा हो, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. फिर एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन रहे. परंतु ये ना हो तो भी तब हमें देखिए शिक्षा की तो अनिवार्यता हमेशा रहेगी, क्योंकि शास्त्र ऐसा समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी में कौन सा पेज हमारे किस समय काम का है वो व्यक्ति बता देगा, वो लाइब्रेरी को अच्छी तरह जानता. नहीं तो मानो अगर हम लाइब्रेरी पहुंच भी जाते तो भी हम क्या करेंगे? हमारी किताबें बहुत हैं पर उस समय जीव को क्या आवश्यकता है प्रगति के लिए? हाँ, तो दोनों की आवश्यकता है. और यदि दीक्षा गुरु शिक्षा दे रहा हो तो बहुत अच्छा. बाबा जी हम सबके शिक्षा गुरु भी हमेशा हैं, क्योंकि उनके ग्रंथ के का ही हम अनुशीलन कर रहे हैं. तो आप सब सबसे भाग्यवान हैं. हम कई महात्माओं से चर्चा कर चुके हैं. जो बाबा जी का जो स्तर है वो दूसरा उस स्तर पे मतलब सोच भी नहीं सकते कोई है, इतना ऊंचा स्तर है. जब इतने शक्तिशाली व्यक्तित्व के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है तो समझ लीजिए हम कहते हैं हमारी बैक बहुत स्ट्रांग है. हमारी बैक वाकई में बहुत स्ट्रांग है. हमारे जितने भी गुरुजी लोग हैं सब सिद्ध महापुरुष हैं और महाप्रभु से ये परंपरा चलती आ रही है. तो आज हमें जो तिलक प्राप्त हुआ और कंठी प्राप्त हुई अप्राकृत है, ये दिव्य जगत की है, नवद्वीप धाम का है. तो वहां पे हम यही सनातन तिलक होगा हमारा जी. तो ये अप्राकृत तिलक हमारे गुरु ने दिया है. हम सोचते हैं कृपा हो जाए गुरु जी कृपा करो, वो तो कर तो दी और इससे बड़ी कृपा क्या हो गई? एक भौतिक व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यक्तित्व प्रदान कर दिया. जब कंठी बंद करा तो नित्यानंद के चरण कमलों में हमें हमेशा के लिए सौंप दिया. अब नित्यानंद हमें नहीं त्यागेंगे, हम कितने भी गंदे क्यों नहीं है पर नित्यानंद हमें अब कभी नहीं त्यागे. तो बहुत बहुत बड़ा दिन है. और अगर कोई गलती से भी प्रमादवश, आलस्यवश, मूर्तावश अगर कोई कंठी का तिलक का परित्याग करता है तो उसे इतने भारी परिणाम भोगने पड़ेंगे कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता. तो ये हमें प्राप्त हो रहा है, साथ में जिम्मेदारी भी है, इसको हम अच्छी तरह निभाएं. और आज के दिन हम लोग अनन्यता कैसे अनन्यता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? अनन्य भक्त बनना ही समझ आ गया। अनन्य का मतलब मेरे बीच में और भगवान, मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ना कोई व्यक्ति, ना कोई विचार, ना कोई परिस्थिति, ना कोई आसक्ति, कुछ भी नहीं आना चाहिए, ना व्यापार, ना कुछ भी। मेरे और भगवान के बीच में कोई बाधक नहीं होना चाहिए, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े करनी चाहिए। अनन्यता में फिजिकल नहीं कुछ त्यागना होता, मेंटली त्यागना होता। जो ग्रस्त भक्त थे नवद्वीप के अंदर, नवद्वीप धाम में जब भगवान आए तो महाप्रभु, क्योंकि ज्यादातर भक्त ग्रस्त थे पर अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त का ये मतलब नहीं कि सन्यास, महाप्रभु के 4-6 सन्यासी भक्त, 15 थे सब मिला के जो सन्यासी थे, बाकी इतने इतने भक्त थे, वो सारे क्या थे? ग्रस्त थे। पर कौन से भक्त थे? अनन्य भक्त। तो हमारा गोल शुरू से एकदम प्रॉपर होना चाहिए, हमारी डायरेक्शन जो है भक्ति की शुरू से ही ठीक होनी चाहिए। मंत्र मिले अनन्यता के लिए, कोई बीच में नहीं, बैठे बैठे सड़क पे बैठे रहे, हम नित्यानंद के चरणों में बैठे हैं, पता, वेरी फॉर्चुनेट, वेरी वेरी फॉर्चुनेट। तो अनन्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एक जीव के लिए गुरु के संबंध में अगर बोला जाए तो शिष्य बनना। बिना शिष्य बने हमारे अभी क्या है, हमारी दिशा जो है, प्रेम जो है हजारों दिशाओं में बटा हुआ है। अनन्यता का मतलब क्या है? सब जगह से अपनी सो कॉल्ड अटैचमेंट को एक स्थान पे रख के उसको कृष्ण की ओर कर दो। तो अभी हमारा जो है सब बटा हुआ है, तो उसमें क्या है, हमारा अहम की वजह से हमारा सब कुछ बटा हुआ है। मेरे को ये ठीक लगता है, वो मेरे को ये भी लगता है, ये भी, ये भी, ये भी, मेरे अहम है। जितनी जगह बटा है हमारा ध्यान, वो हमारा अहम की वजह से बटा हुआ है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं माँ हूं, जीव नहीं हूं, मैं बेटी हूं, जीव नहीं हूं, मैं भाई हूं, भाई हूं, बहन हूं, ये हूं, वो हूं। अनन्यता का ये बाधक है, ये सब अहम। तो शिष्य बनना है हमने, शिष्य बनना मतलब शिष्य, शीश झुकाना, जो शीश झुकाता है वही शिष्य है, शीश। तो इसको हमारे को लिटरली मीनिंग नहीं लेना चाहिए कि शीश झुकाना, जैसे गुरु जब गुरु से दीक्षा ले रहे हैं तब तो हर कोई शीश झुकाएगा, उसमें तो कोई बातें नहीं है, कंठी डालनी है, शीश झुकाना ही होगा और प्रणाम करना है, शीश झुकाना होगा। परंतु क्या ये बोला गया कि दीक्षा सेरेमनी में जो शीश झुकाता है वो शिष्य है? ये बोला गया क्या? जो शीश झुकाए रखता है वो शिष्य है। तद विधि प्रणिपातेन, पातेन नहीं, प्रणिपातेन, ये विधि है, ये काट नहीं सकता कोई। तद विधि प्रश्न बाद में, पहले क्या? प्रणिपात, परिप्रश्न, फिर सेवया। जब ये तीनों चीजें करेंगे तब क्या होगा? जब गुरु वास्तव में हृदय से प्रसन्न होंगे तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब ज्ञान जो दिया जाएगा वो हार्ट टू हार्ट होगा। ऐसे नहीं है, गुरु कोई आंसरिंग मशीन नहीं है कि हम अपना स्वार्थ सिद्ध करके आ जाएं, क्योंकि भगवान मूर्ख नहीं है। शब्दों में ज्ञान होता तो बातें क्या थी, तो कृपा की जरूरत नहीं थी। जैसे देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु, तस्से कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना श्वेताश्वत उपनिषद। ये नहीं बोला जो किताब पढ़ लेगा या गुरु से प्रश्न का उत्तर सुन लेगा तो समझ आ जाएगा, नहीं, ये नहीं होगा। जिसकी गुरु और कृष्ण में बराबर भक्ति होगी, गुरु इसमें जो जीव गोस्वामी बताते हैं वो शिक्षा गुरु की ओर बता रहे हैं, यस्य देवे पराभक्त। शिक्षा गुरु मतलब कि जो हमारा शिष्य बनाए, हमको शिष्य बनना है, जहां से हम जैसे शिष्य बन सके तो उस व्यक्ति में हमारी भगवत बुद्धि होनी चाहिए। शीश झुकाना मतलब अहम झुकाना, कब कब झुकाना? हर समय झुकाना। अहम का टेस्ट तभी आता है जब कोई बात बोली जाए और फिर हाँ मैं करूंगा नहीं, पर ये बात तो नहीं है, पर लेकिन पर मेरे घर की परेशानी, इनको क्या दे सब, तो लेकिन किंतु परंतु जो होते हैं वो है कि शीश ना झुकाने का, मैं शीश नहीं झुकाऊंगा, एक लेकिन परंतु किंतु मतलब बोर्ड लगाया हुआ है, मैं शीश नहीं झुकाऊंगा। एक्चुअली दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक जगत ज्ञान है, वो कोई व्यक्ति देना भी चाहे, और जब हमने हाथ यूं किया ही नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? अगर दे दो, मान लो वो 1 करोड़ साल तक भी देता रहे तो क्या होगा? वो ये आके गिरता रहेगा। तो पात्रता यही है झुकना, झुका कि जितना झुका उतना मिलेगा। देखो थोड़ा थोड़ा झुक रहा है, ये देखो ना पूरा झुक गया तो लोटस बन गया, पूरा सब आ जाएगा। और अनन्यता हम अपने डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर हम घर में आप केयरलेस रहेंगे तो। अगर हम पति पत्नी आपस में आर्गुमेंट करेंगे तो अनन्यता नष्ट होगी। वैष्णव पहले तो क्या था कि पति से अपराध के प्रति आर्गुमेंट कर रहे हैं, एक अब व्यक्ति है जो नित्यानंद के चरण कमलों में बैठा है उस व्यक्ति के प्रति अपराध करेंगे। आर्गुमेंट, समझाना, शाउटिंग, येलिंग, मुंह बनाना, एक वैष्णव अपराध है भक्त को देख के प्रसन्न न होना। हम तो बताएं क्या क्या किस हद तक चले जाते हैं, किसी कीमत को उसे प्रसन्न ना देखना, ऐसा भी हम कर लेते हैं। तो हमें बहुत सचेत रहना होगा। पति पत्नी जो है हमारी भक्ति सबसे ज्यादा घर में बढ़ सकती है अगर हम सही रूप से व्यवहार करें। और डिस्ट्रॉय करने के तो हम घर में कर सकते हैं एक दूसरे से गलत रूप से व्यवहार करके। तो अब सब वैष्णव दीक्षा वाले भक्त हैं तो बहुत सचेत रहना होगा। मतलब नाउ वी आर डीलिंग इन सब्सिडरी ऑफ द स्टार्टअप बिरला ओनली, नाउ वी आर डीलिंग इन मिलियंस ओनली। छोटा काम अब बंद हो चुका है तो जो लॉसेज हैं वो भी मिलियंस में रहेंगे, प्रॉफिट भी मिलियंस में रहेंगे। बहुत सचेत रहिए। तो सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, तो सेवा अधिकार मिल गया महाप्रभु की सेवा का अधिकार मिल गया। तो सेवा का अधिकार ही तो है सनातन नाम प्राप्त होना। सेवा का अधिकार बिना वैष्णव दीक्षा के कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी अर्पण नहीं करता, क्योंकि बिना बीज मंत्रों के अर्पण नहीं किया जा सकता कुछ भी। तो आज सबकी वैष्णव दीक्षा हो गया तो अब हम वास्तव में भगवान के साथ कुछ संबंध स्थापित करने कुछ अधिकारी बन रहे हैं। अदरवाइज तो कोई संबंध वगैरह कुछ नहीं है, काम चल रहा है, बस चल रहा है किसी तरह काम चलाना, प्रॉपर तरीके से नहीं होता। जिससे आप आए हो या जो आपसे आया है सबसे ज्यादा अटैचमेंट उससे होती है। माँ बाप जो आपसे आए, जो आपको मानते हैं माँ बाप, यही है ना, जिससे आप आए जो आपसे आए। एक्चुअली ये बात ही गलत है, ना कोई हमसे आया ना कोई हमसे आए हैं, हम तो जीव हैं, जीव भगवान का अंश है, भगवान से आए। कोई बीच में आने की बात तो सोचिए, संसारी हैं आपके माँ बाप, हम सब जो भी सब संसारी हैं। हम किसके भक्त हैं, हमारे इष्ट कौन है, राधा रानी। तो मेरे और राधा रानी के बीच कृष्ण भी नहीं आने चाहिए, हमें तो केवल कृष्ण भी नहीं चलेंगे, पुरुषोत्तम महा कृष्ण भी नहीं चाहिए, कृष्ण प्रसाद नहीं चाहिए। कृष्ण प्रसाद में कोई भेद नहीं है, मंजरी को कृष्ण प्रसाद दोगे तो नहीं चाहिए हमें, हम राधा निष्ठ हैं, हम राधा दासी। तो अनन्यता इतनी बड़ी है, मालूम है कीमत क्या है, कृष्ण को भी नहीं बीच में आने देना। कृष्ण कहते हैं मैं आ गया हूं, मैं तुमको पता है कितना सुंदर हूं, सारी स्त्रियां त्रिभुवन की मेरे साथ रमण करने को तरसते हैं, आओ हम कुंज में चलते हैं। मंजरी को ऐसे लुभाते हैं कृष्ण, आओ हम कुंज में चलते हैं, वहां विलास करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम छुप के चलते हैं, ललिता को भी नहीं, राधा को भी नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से तो अगर कोई हमारे जैसा हो इसमें क्या दिक्कत है। कृष्ण ऐसे ही बोलते हैं, देखो वो सखियां भी तो है ना, मैं उनके विलास भी करता हूं और राधा की भी सखियां, तो तुम भी ऐसे ही बन जाओ। और जो मंजरी भाव निष्ठ साधक है क्या हुआ है, कृष्णा आउट आउट, जो है वो बिना राधा के कृष्ण को भी नहीं चाहती है। ये है अनन्यता। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना कभी भी अनन्यता का, कृष्ण भी नहीं चलेंगे। हम अपने गोल को हमेशा क्लियर रखें कि कृष्ण भी बीच में आते हैं तो भी कोई बहुत कोई खुशी की बात नहीं है, हमारे उपास से केवल कृष्ण नहीं। तो फिर संसार में कोई व्यक्ति कैसे हो, कोई चश्मे की दुकान मेरी अनन्यता में बाधक नहीं बननी चाहिए, और दुकानें तो बाधक रहेंगी। फिर शास्त्रम लोचनम मनुष्यम, शास्त्र लोचनम आंखें, लोचन मीन्स कमल लोचन, कमल के जैसे जिसकी आंखें होती है, भवन का एक नाम है कमल लोचन, एक भक्त का नाम है कमल लोचन दास, जैसे कमल के समान आंखें, लोचन मतलब आंखें। शास्त्रम लोचनम मनुष्यम, जो शास्त्र है वो आंखें हैं मनुष्यों के लिए। तो बिना आंखों के व्यक्ति कैसे देखेगा, तो इसलिए हर पद पे जो व्यक्ति शास्त्र से मार्ग, अगर हम नहीं जानते शास्त्रों को तो वही व्यक्ति शास्त्रों में जानता जो हमें गाइड कर सकते। हर समय लोचनम, आंखों की जरूरत कब कब होती है? हर समय होती है। तो इसलिए यदि हम शास्त्र को अच्छी तरह नहीं जानते तो उस व्यक्ति को जो शास्त्र को अच्छी तरह जानता हूं, नहीं तो वी विल कीप ऑन टम्बलिंग हियर एंड देयर, लुढ़कते पुढ़कते चलेंगे। ये नहीं बोला गया सन्यासी लोचनम मनुष्यम, जो सन्यासी है वो मनुष्यों की आंखें है, नहीं, सन्यासी वन्यासी कुछ नहीं, शास्त्रम। हम लोग समझते हैं जो सन्यासी है वो सब ठीक बोलते हैं, ये हो सकता है शास्त्र जो कोई स्त्री हो वो सन्यासी से कई गुना ज्यादा अधिक प्रगतिशील हो भक्ति में। तो एक्सटर्नली देखना, एक्सटर्नली हम देखना बंद करें, शास्त्र ही है मेन, शास्त्री बेस है सबके लिए, कोई भी चीज को स्वीकार करना है कुछ, यही आंखों से, इसलिए पूरा दृढ़ता विश्वास जो है यही है। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है, कुछ प्रॉब्लम होते कितने सारे आपके को डिवोट साथ के फेलो डिवोटीज है, सो फॉर्चुनेट, लविंग डिवोटीज, कैनॉट गेट एनी बेटर। ये विवेक चूड़ामणि में बताया गया शास्त्रम लोचनम मनुष्यम। एक्चुअली अभी हमारे को पता नहीं हम किन किन लोगों से जुड़ रहे हैं, तो हम लोग हमारी जमीन पे नहीं हम खड़े रह सकते, फ्लाइंग इन द एयर, किन व्यक्ति किन से जुड़ रहे हैं, किन के साथ बैठे, कुछ हमारे अभी हमारे को पता नहीं है ये चीजें, अभी हमारे को इसकी वैल्यू रियलाइज नहीं है हमें से मोस्टली लोगों को। ये वैल्यू रियलाइज हो जाए ना तो अपने आप लाभ अपना उठाना सीख जाएंगे। अब जैसे साथ वाले जो सरदार जी बैठे हैं वो सरदार है, सरदार नहीं मनमोहन सिंह हो तो तो उससे कितना काम बन सकता है, जो चाहो बन सकता है, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज थे यहाँ। शास्त्रों का श्रवण मनन या अध्ययन एकमात्र किसी महत्वपूर्ण या गुरुदेव के शरणागत होने पर संभव है। तो शास्त्र का श्रवण मनन अध्ययन संभव नहीं है अदरवाइज, ऑल बाय वनसेल्फ। पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से तत्काल गुरुदेव में सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, क्योंकि सभी गुरुओं के प्रति अलग प्रकार की श्रद्धा है, तो वो पूर्व जन्म संस्कार की वजह से होता है। अब जैसे जो गायत्री मंत्र प्राप्त हुए हैं, कई लोग इतने एडवांस होते हैं कि पहली बार गायत्री मंत्र सुनते ही गुरु के द्वारा कान में सुनते ही बेहोश हो जाना, पूरा भाव में चले जाना, ऐसा भी होता है। ये मंत्र हमने भी सुने, ये चित्त शुद्धि जितनी होगी उतना जल्दी इसका फर्क पड़ेगा। और शीश झुकाना इज नॉट अ रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी, हमें कि हमें दिवाली के दिन मैंने शीश झुका दिया जन्माष्टमी में राधा कृष्ण, शीश तो रोज के दिन झुकाने वाली बात, इस बात को याद रखना है, नहीं तो क्या हुआ, नहीं मैं नहीं, अब बोल दो इसको बोलो, ऐसे हम पति पत्नी आपस में ऐसे ही बात करते हैं ना, महत्व पुरुष बोलता ही नहीं है कभी, वो यूं भी नहीं करता, यूं आईब्रो भी रेज नहीं करता, तो बोलना तो दूर की बात है, जब तक भगवान से द्वारा प्रेरित ना हो, जो बात होती है वो भगवदीय होती है, भगवान बोल, क्योंकि भगवान हमें बोले हमें समझ ही नहीं आता। इसलिए महत्व पुरुषों के, ये नहीं सिर्फ गुरु के, जो व्यक्ति उन्नत है भक्ति में गुरुजन, उनके मुख से भगवान बोलते हैं, हमें सुनाई वैसे नहीं देता, तो जो बोल रहे हैं वो भगवान बोलते हैं, ये बात समझ जाइए। जो विल ऑफ द गुरु इज विल ऑफ द लॉर्ड, और जो गुरु को विल को त्यागने का सोच सकता है वो भगवान को त्याग रहे हैं।